ओम शांति। आप सभी का पुनः स्वागत है। अब हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय भ्राता बीके जगबीर भाई का। हम इनका तालियों से स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये स्पोर्ट्स पर्सन की तालियां नहीं है, प्लीज थोड़ा देखो। जगबीर भाई 21 वर्षों से ही राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं, साथ ही राजयोगा का प्रयोग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेट हैं। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला से बतौर योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आप कई नेशनल टीम्स को ट्रेन कर चुके हैं। आप कई नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फोरम सेमिनार कॉन्फ्रेंस के गेस्ट स्पीकर रहे हैं। आप माइंड पावर और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। आप बीजिंग ओलंपिक गेम्स 2008 और सिंगापुर यूथ ओलंपिक गेम 2010 में भी हिस्सा ले चुके हैं एंड आने वाले ओलंपिक गेम के लिए भी एग्री हैं। आपको यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए आमंत्रित किया गया है। आप एथलेटिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग के नेशनल प्लेयर रहे हैं। आप विश्व स्तरीय मैराथन के सिल्वर मेडल विजेता हैं। आपका सादर आमंत्रण है और आपसे अनुरोध है कि आज का सेशन होलिस्टिक फिटनेस का आरंभ करें। आप सभी से अनुरोध है इस सेशन का पूर्णतः लाभ उठाएं। ओम शांति।
ओम शांति। आप काफी टाइम से बैठे हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करें अपना सेशन। तो कैन यू गेट अप फ्रॉम योर सीट, जस्ट स्टैंड। यू कैन मूव योर हैंड्स, लेग, यू कैन मूव योर नेक, मूव योर हिप, बोथ द साइड। यू कैन रेज योर हैंड्स, साइड, फ्रंट, ओके, ऑल सेट। सो प्लीज टेक योर सीट्स। दुनिया के इतिहास में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी के ऊपर काफी रिसर्च होना स्टार्ट हुए। उनमें है एक तो रॉजर बैनिस्टर फ्रॉम यूके, जो एक एथलीट थे। दुनिया में हजारों साल से कोई भी व्यक्ति एक मील की दूरी चार मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था, तो वो कारनामा इन्होंने 1954 में किया। और जब इन्होंने वो कारनामा किया तो उसके नेक्स्ट ईयर ही अनेक एथलीट ऐसे थे जिन्होंने वो एक मील की दूरी चार मिनट से कम में तय करके दिखाई। और नेक्स्ट ईयर तीन गुना एथलीट ऐसे थे जिन्होंने ये दूरी तय करके दिखाई। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे मन के अंदर ऐसा ब्लॉक है कि हम ये काम नहीं कर सकते। और जैसे हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हमारे जीवन में वैसी ही उपलब्धियां आनी शुरू हो जाती। अभिनव बिंद्रा जी से पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हम इंडिया किसी भी गेम में नहीं ले पाया था। तो हमारे मन में यह था कि जो भी हमारे एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं उनका यह विजन होता है कि ओलंपिक में गोल्ड लेना है, बहुत कम है। ठीक है, नेशनल में चले जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करके जॉब मिल जाएगी। तो ज्यादातर हमारा जो विजन है, जो हमारा एम है, वो उस लेवल का नहीं होता। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी उस लेवल तक हमें हेल्प नहीं कर पाता। दूसरा था ये वेस्ली एलेक्सीव, ये तो रॉजर बैनिस्टर थे। 6 मई 1954 को इन्होंने वो उपलब्धि प्राप्त की। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सैकड़ों बार अपने मन में ऐसा विजुलाइज किया था कि मैं ग्राउंड में गया हूं और ग्राउंड का पूरा राउंड लगाया और इतनी तेज दौड़ा हूं कि मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मतलब एक्चुअल इवेंट करने से पहले मन में उन्होंने बहुत बार विजुलाइज किया। ऐसा ही हुआ था हमारे ये जो वेस्ली एलेक्सीव हैं, 500 पाउंड से ज्यादा कोई भी वजन नहीं उठा पा रहा था, कोई वेट लिफ्टर। तो इनके कोच ने एक बार क्या किया कि 495 पाउंड्स को उन्होंने, मतलब 500 पाउंड को 495 बोला उसको कि ये 495 है तो आप उठाइए। तो उन्होंने सोचा कि ये उतना ही है जितना मैं उठाता हूं, तो उन्होंने उठा दिया। बाद में उनको बताया गया कि आपने तो 500 पाउंड का ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते ही चले। तो ऐसे जो हमारे मन में ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये ऐसा क्या कारण है कि माइंड बॉडी और सुपर कॉन्शियस माइंड का ऐसा कौन सा रिलेशन है, वो हमें इस संस्था में आकर के पता चला। इससे पहले हम लोग योगासन करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, लेकिन वो सब हठ योग की बात है। तो जब इस संस्था से हम जुड़े तो हमें पता चला कि राजयोग और हठ योग में डिफरेंस है या नहीं। आपने पढ़ा होगा, और मैंने खास एनआईएस में जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है इसीलिए किया था कि मैं जानूं कि यहां की ट्रेनिंग में और वहां में क्या फर्क। तो पतंजलि ने उसमें लिखा हुआ है कि राजयोग जो है वो सब योगों का राजा और आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये पतंजलि ने हजारों साल पहले लिखा हुआ है। लेकिन उसका एक्चुअल डेफिनेशन, उसकी साइंस हमें यहां आकर के समझ में आई। तो ये जो रिलेशन है माइंड का, तो अभी इतने आपने सेशन सुने, इतने लेक्चर सुने, हो सकता है एक दो बातें कुछ रिपीट भी हो जाए, तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज माइंड? अब तक कुछ समझ में आया माइंड कहाँ है, क्या है? जो पहली बार आए हैं वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि काफी लोग इसमें रिपीट कर रहे हैं। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज माइंड? सर फ्रॉम पुणे, आत्मा की क्वालिटी, व्हाट एल्स? माइंड रहता कहां पे बॉडी में? साइड में, पीछे, सेंटर? वेरी गुड। और कोई? आर्नोल्ड शार्ज़नेगर, हैव यू हर्ड दिस नेम? कौन है ये? वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स, 7 times मिस्टर यूनिवर्स। ऑस्ट्रिया के हैं, और लेकिन अभी यूएस सिटीजन है, इन्होंने अनेक फिल्में भी बनाई हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, माइंड इज ए डायनेमो, ए वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, यू कैन हार्नेस इट टू गिव योरसेल्फ अनबिलीवेबल वर्कआउट्स एंड बिल्ड द फिजिक दैट लिव्स अप टू योर वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो वो जब भी प्रैक्टिस करते थे, ही यूज टू फोकस ऑन योर हिज मसल्स, नॉट ऑन द मशीन। और इतने कम टाइम में उनकी इतनी अद्भुत अचीवमेंट रही हैं। तो बहुत अच्छी बुक उन्होंने लिखी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जो पूरा बाइबल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। इतनी मोटी बुक है, अराउंड 1500 रुपीज की। तो इतना डीपली इन्होंने उसमें लिखा है कि हाउ वी कैन यूज आवर माइंड इन आवर स्पोर्ट्स। तो आप जरूर उसको पढ़ें बुक को। हमारे यहां पे इसका जो कनेक्शन बताया है अभी तक, आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल माइंड मतलब सुप्रीम सोर्स इन द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, उसका कनेक्शन हमारे सोल एनर्जी, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइट, दैट इज सोल, एंड द एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम सोर्स कम्स टू सोल, देन इट गोज टू द माइंड, देन इट इज ट्रांसफॉर्म टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करके। कुछ कॉर्टिसोल स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, कुछ एंडोर्फिन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो ये अलग अलग हॉर्मोन्स हमारे मन की स्थिति के अनुसार हमारे बॉडी के अंदर, चाहे हम चाहें या ना चाहें, वो रिलीज होते रहते हैं। मान लो आपकी कोई इवेंट है और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, तो यू मे बी हैविंग स्ट्रेस हॉर्मोन्स। यहां हम क्या सिखाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक में, मेडिटेशन से, कि हमें बहुत रिलैक्स रहना है। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हंगरी में जाना हुआ है एज ए माइंड ट्रेनर बॉडी बिल्डिंग टीम के साथ, तो प्रेमचंद डेगरा जी को ये बड़ा कॉन्फिडेंस था यहाँ आने के बाद कि जो यहाँ ऐसे आप रिलैक्सेशन की टेक्निक बताते हो और आप इतना पीसफुली सारा काम करते हो तो ये चीज हमें जरूर हेल्प करेगी हमारे बॉडी बिल्डर्स को। तो जब हम उनकी टीम के साथ वहां गए तो उन बॉडी बिल्डर्स को मैंने यही बताया, तो जैसे ही वो तैयार हो रहे थे रूम में और उनका नाम अनाउंस होने वाला था तो मैं एक बॉडी बिल्डर के पास गया, मैंने कहा भाई आप थोड़ा रिलैक्स रहना, एंड देन ही गॉट इरिटेटेड, सर प्लीज डोंट टॉक टू मी नाउ। तो पीछे कोच खड़े हुए थे, ही वॉज ऑब्जर्विंग कि ये मतलब कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको खास बुलाया है और आप जैसे ये कहते हैं आप वैसे करो। बोला सॉरी सर, सॉरी सर। उसके बाद बातचीत की मैंने उनको, मैंने कहा जस्ट फॉरगेट यू आर गोइंग ऑन द स्टेज, आपको सिर्फ ये स्टेज पे ये सोच के जाना है कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूं और केवल मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे जा रहा हूं। राजेंद्रन मनी फ्रॉम चेन्नई, दिल्ली में उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो बोला ठीक है सर, मैं ऐसा ही फील करूंगा। और स्टेज के ऊपर जाने से पहले जब वो क्यू में लगते हैं तो वहां भी मैं उनके साथ था और ऐसे ही बातचीत करते करते उनको बहुत रिलैक्स किया। और मैंने उनको बोला कि ये पांच जजेस नीचे बैठे हैं, आपको इनकी भ्रुकुटी में देखना है और जस्ट 10-10 सेकंड सभी को दृष्टि दे करके और आपको अपना पोज जैसे भी आपको ऑर्डर करते वैसा पोज करना। आप बिलीव नहीं करोगे, 5-6 महीने पहले वो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग से इतना परेशान हो गया था, ही वॉन्टेड टू लीव बॉडी बिल्डिंग, और उसने ऐसा ही किया, बहुत रिलैक्स होके गया। और जैसे स्टेज पे गए बाद में उन्होंने जजेस को भी देखा और कूलली जो वो कमांड देते थे शो योर बाइसेप्स, तो उन्होंने वैसे ही वही पोज दिखाया। और बाद में जब रिजल्ट आया तो पता है क्या रिजल्ट था, ही वॉज मिस्टर यूनिवर्स। मैं आपको उनकी क्लिप भी दिखा सकता था। सो दिस वॉज द अचीवमेंट ऑफ रिलैक्सेशन। सेम थिंग अंकुर शर्मा के साथ हुआ, उन्होंने भी वही ऐसे ही प्रैक्टिस किया। हम आमने सामने खड़े होते थे स्टेज के ऊपर जाने से पहले, थोड़ा मेडिटेटिव मूड में परमात्मा से एनर्जी लेकर के उनको भी वाइब्रेशंस देना और खुद भी रिलैक्स होकर के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके आए थे। दो मिस्टर यूनिवर्स, एक ब्रॉन्ज मेडल, नायर फ्रॉम मुंबई नेवी, ही गॉट ब्रॉन्ज मेडल। तो ऐसे ही हमने अनेक गेम के अंदर ये ट्रेनिंग्स हमने करके देखी। तो इसमें ये दिखाया कि माइंड जो है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, अभी तक आपने कई बार सुना होगा, तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 आवर्स एक्टिवेट रहता है। हमारी जो सबकॉन्शियस पावर्स हैं, वो रिजर्व पावर है हमारे अंदर, उसको हम यूज करना सीख जाएं कोई टेक्निक के द्वारा तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इन दोनों माइंड में ये भी डिफरेंस है कि कॉन्शियस माइंड वर्ड की लैंग्वेज समझते हैं। अभी मैं जो आपको शब्द बोल रहा हूं तो आपको सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये विजुअलाइजेशन की भाषा समझते हैं, पिक्चर्स की। आपने अपने लाइफ के बारे में क्या विजुलाइज किया हुआ है उतना ही अचीवमेंट आपको मिलेगा। तो ये विजुलाइजेशन टेक्निक जो यहां ट्रेनिंग दी जाती है, इससे हमें प्राप्तियां होनी स्टार्ट हो जाती। और इन दोनों के अंदर ऐसा ही रिलेशन होता है जैसे कमांडर और सेना का होता है। जैसे कमांडर कहता है कि भाई आपको इतना एरिया नष्ट करना है, तो सेना क्या करेगी, वो सोचेगी कि वहां लोग परेशान होंगे, मरेंगे, इतने बच्चे बूढ़े, वो तो अपना काम करना स्टार्ट कर देते। ऐसे ही अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हमसे कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, या ये तो बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेना, कोई भी नेगेटिव बात हम अपने आप से करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक आपका थॉट प्रोसेस मिल जाता है कि भाई मुझे ऐसा जीवन में परिस्थितियां क्रिएट करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप से जो डायलॉग करते हैं वो पॉजिटिव हो और हमेशा सक्सेस दिलाने वाला हो, दिल शिकस्त करने वाला नहीं। फिर ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी ईईजी के द्वारा माप सकते हैं। तो जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बीटा वेव में होते हैं, शायद आपको बताया भी होगा कि एक सेशन में, तो बीटा अल्फा थीटा डेल्टा। तो सबसे क्रूशियल जो टाइम है वो है जब हम जब भी सो के उठते हैं, चाहे सुबह या दोपहर को, तो 5 to 10 मिनट्स जो हमारे क्रिएटिव टाइम है ये हम मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन के लिए यूज करें। उस समय ना बात करना शुरू करें, ना मोबाइल, न्यूज, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐसा ना करें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा से बीटा में चली जाए। तो 5 to 10 मिनट्स जो हम अल्फा लेवल में रहते हैं इसको हमें बेस्ट यूज करना, तो ये हम इसमें ट्रेनिंग बताते हैं। और ये बॉडी के बारे में जैसे बताया, REDD, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट, इन तीनों में अगर हम बैलेंस रखें अपने इवेंट से पहले तो हम 100% बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। विनिंग और लूजिंग इट इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हर व्यक्ति तो गोल्ड मेडल भी नहीं जीत सकता, लेकिन जब हम जितना हमने प्रैक्टिस किया है अगर हम उतना भी परफॉर्म कर दें तभी हमें बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। ये होगा जब आप अपना रेस्ट का पीरियड उस पर ध्यान देंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे मान लो आपका कल मैच है, एक बार हॉकी टीम, आई डोंट नो विच ईयर, राजेश चौहान जी हैं यहाँ पे, तो एक बार हॉकी टीम का कैप्टन का इंटरव्यू आया, नेक्स्ट डे क्रूशियल मैच था कि अगर हम वो नहीं जीतते थे तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने से मतलब वंचित रह जाते थे। तो ये सोच सोच करके टीम को रात को नींद ही नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो हम क्वालिफाई ना कर पाए, हम वापस ना चले जाए अपने देश। तो वो 1:30 बजे तक सोए रात को, मॉर्निंग में जब मैच हुआ तो वही रिजल्ट हुआ, दे लॉस्ट द मैच। तो उन्होंने बताया कि स्ट्रेस के कारण वी कुड नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड वी लॉस्ट द मैच। या तो स्ट्रेस के कारण, या मान लो आप रात को देर रात तक बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज हैं, किसी भी कारण अगर आपका रेस्ट प्रॉपर नहीं है तो इट विल अफेक्ट योर 4 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन। ओलंपिक गेम 4 साल में आते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज, मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज, फिर डाइट। डाइट भी जब हम खाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि एकदम मेडिटेटिव मूड में, ऐसा नहीं है कि हम भोजन भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो साइलेंस में भोजन करने से उससे काफी एनर्जी मिलती है और उसको एक प्रसाद के रूप में खाएं तो इट विल गिव यू मोर एनर्जी एंड मोर पावर। तो दीज वर 3 पॉइंट्स। बाकी जो हार्मोन्स रिलीज की बात है बॉडी के अंदर, इसके लिए हमें खुद की स्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों से नाराज ना हो, अपने आप को किसी भी तरह से खुश करने का कोई ना कोई ऐसा प्लान करें कि अननेसेसरी बातें नहीं करें, बार बार घर पे फोन नहीं करें, कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई जी फलाना रिलेटिव ने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर एकदम कम हो जाएगा। तो हम जैसे एक साधु की तपस्या होती है ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन की भी एक तपस्वी जीवन है। आप ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते हो, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुशील कुमार जी ने एक बार इंटरव्यू दिया था कि ओलंपिक में मेडल मिलने से पहले उनको मतलब एक फैन तक ही अवेलेबल नहीं था रूम, ऐसी कंडीशन थी। प्रैक्टिस किया अपना, वहां रेस्ट किया, खिड़कियों में जाली नहीं है, मच्छर आ रहे हैं, तो बाद में जब अचीवमेंट हुआ तो इतना अमाउंट आ गया कि चारों तरफ। तो हमारे यहां ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि स्टार्टिंग में हम एंकरेज करें और एथलीट्स की इन सब सुविधाओं का ध्यान रखें, और सुविधाओं के अलावा प्लस सेल्फ का मोटिवेशन। सो दीज आर द कॉन्टेक्ट। ये जो EEG मैंने बताया कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, अभी आपको पता चल गया होगा सभी को, या कोई समझता है कि एक ही बात है ब्रेन एंड माइंड? वेरी नाइस। ब्रेन इज ए हार्डवेयर एंड माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। तो ये इसमें दिखाया है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसीज जो मैंने आपको बताई थी पहले। रशिया में एक टेस्ट हुआ था कि उन्होंने 4 ग्रुप में जो एथलीट थे उनको 4 ग्रुप में बांटा और उनको ट्रेनिंग दिया। फर्स्ट ग्रुप को 100% फिजिकल ट्रेनिंग दी और 0% विजुलाइजेशन। सेकेंड ग्रुप को 75% फिजिकल 25% विजुलाइजेशन देन 50-50 एंड 25-75। तो जब उन्होंने कुछ पीरियड की ट्रेनिंग के बाद जब उनका परफॉर्मेंस देखा तो ये उनका रिजल्ट था। ग्रुप नंबर वन रैंक फोर्थ एंड रिवर्स रिजल्ट था, मतलब जिनका 75% विजुलाइजेशन था उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी। ऐसा अनेक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं कि जब एथलीट्स को बैठाया गया और उनको बोला कि आप अपनी फिंगर्स को मूव करो तेज से, और जब ईईजी लिया उनका तो जो ब्रेन वेव्स आई थी उसमें कुछ 5-10 मिनट रेस्ट के बाद उनको कहा कि अब आप ऐसे ध्यान में बैठ जाओ और मन में सोचो कि आप बहुत तेज तेज फिंगर हिला रहे हो। तो साइंटिस्टों ने पाया कि लगभग 19-20% मतलब 19-20 फर्क था, अदरवाइज सिमिलर ब्रेन रिकॉर्डिंग थी ईईजी के अंदर। तो इससे साबित होता है कि जो भी हम अपने मन में सोचते हैं उसका हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस पे बहुत गहरा असर पड़ता है। सो दैट वॉज द टेस्ट। ये फिर मैंने पहले दिन भी बताया था आपको कि कैसे शूटिंग और बॉक्सिंग, तो ये सब टीम्स के अंदर हमने अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। बस इसके अंदर यही है कि इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप ये कहेंगे नहीं नहीं इस रिलैक्सेशन से हमें कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, तो देन इट विल नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। कुछ टूल्स हैं जो हम अपने जीवन में ध्यान रख सकते हैं, जैसे अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, फेलियर, फॉरगिवनेस, रिलेशंस, वैल्यूज, हॉबीज, डायलॉग विद द सेल्फ, राजयोग एंड क्रिएटिव विजुलाइजेशन। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अफेक्ट करती हैं। जैसे आपको अफर्मेशंस के बारे में पहले बताया था कि हमारा जो सबकॉन्सियस माइंड है, जब भी हम अपने बारे में कुछ कोई भी स्वयंमान की बातें या अपने बारे में कुछ ऐसी लाइन पॉजिटिव लाइन बार बार अफर्म करते हैं, मतलब मिनिमम 3 times इन ए डे, तो इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम लविंग एंड केयरिंग, आई लव हार्ड वर्क, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम जीनियस, आई एम डायनेमिक, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी। तो जैसे ही आप अपने बारे में उठने के बाद सुबह जब उठेंगे और अपने बारे में ऐसे अफर्मेशंस देंगे अपने आप को, तो सबकॉन्शियस माइंड उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड फॉर पॉजिटिव अफर्मेशंस। यूजली आपने देखा होगा आप छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे मान लो रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं, तो पहला थॉट क्या आएगा, यार मुश्किल है रिजर्वेशन मिलना। हम ये भी तो कह सकते हैं नहीं मुझे मिलेगी। तो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी होती पेरेंट्स का भी बच्चों को, जब दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चे को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर देंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, तू तो ऐसे बिल्कुल नालायक है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर तो कुछ टैलेंट ही नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता। तो ऐसे नेगेटिव अफर्मेशन जब हम उसको देते हैं बच्चे को, तो बचपन में ही हम उसकी ट्रेनिंग कर देते हैं माइंड की, तो बड़े होकर वो क्या प्राप्त कर अचीव करेगा कुछ। तो ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी मदर का इनके जीवन में बहुत रोल रहा है उसको, उनको उस लेवल तक ले जाने में, तो उनको बहुत बोल्डली उनको इंस्पायर करते थे कि यू कैन डू इट। भगत सिंह का आपने सुना होगा। तो ये लोग जब पूरे उमंग उत्साह से इनका जीवन ऐसा गया तो लाइफ में इन्होंने कुछ अद्भुत करके दिखाया। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के बारे में भी, अगर हम ग्रेटफुल रहे हर चीज के लिए, जैसे आप यहां बैठे हो अभी, तो यू आर ग्रेटफुल टू होम, टू दिस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, परमात्मा का। तो हम हर स्टेप पर किसी ना किसी व्यक्ति के ग्रेटफुल रहते हैं। आपने टैक्सी लिया एक यहां से और अपने डेस्टिनेशन तक, तो यू आर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि व्हाट डॉक्टर नॉर्डे सेड, आई कैनॉट हियर व्हाट यू आर नॉट सेइंग। क्या मतलब है, अगर हमने किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ काम किया है एंड इफ यू आर नॉट थैंकफुल, इफ यू आर नॉट सेइंग इट, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब इसने आभार व्यक्त किया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो जस्ट से वन वर्ड थैंक यू सर. तो इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी विच वी शुड यूज इन अवर माइंड इन लाइफ. ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स माइंड इन हार्मनी विद द क्रिएटिव एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स. अगर हम ग्रेटफुल हो जाएं चाहे अपने कोचेज के प्रति अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, तो हमारे मन में जो ये चलता रहता है कि उस लेवल के कोचेज नहीं है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो इस चीज से भी हमारी काफी मेंटल एनर्जी ड्रेन होती रहती है. अभी प्रेमचंद डेगरा अपने लाइफ में 1988 में वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है तो और लोग क्यों नहीं बन सकते. साइना नेहवाल वर्ल्ड नंबर वन बन सकती है तो ऐसी अनेक साइना नेहवाल क्यों नहीं बन सकती. तो जरूर अंदर हमारे माइंड की जो अंदर हमने हमारी जो सोच है दैट डिफाइंस व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. देन वी हैव इन आवर लाइफ देर आर मेनी टाइम्स वी फेस फेलियर्स, चाहे स्टडीज में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में. तो फेलियर से आपने देखा होगा हमें ज्यादा अनुभव मिलता है व्हेन वी फेल इन आवर लाइफ. हम क्या कई बार दिल कष्ट हो जाते हैं कि नहीं मैंने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया तो आई कुड नॉट सक्सीड. तो ऐसे में हम अपने आप को दिल कष्ट ना हो और इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें जो अच्छे अचीवर्स हैं, उनकी विशेषताएं देखें कि उनके जीवन में क्या था, उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया. कपिल देव जी हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, उनकी लाइफ में क्या ऐसा था कि वो उन्होंने इतना अचीव किया इसी सर्कमस्टेंसेज में, इसी कंट्री में, इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने. तो ऐसा हम अपने आप को सेल्फ को मोटिवेट करते रहें. और कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कोच कैप्टन प्लेयर्स के रिलेशंस, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो हम जब भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति से कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाए कि हम उसको क्षमा ना कर पाए तो इससे हमारा खुद का ही नुकसान हो. मान लो आपका किसी ने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, आपको कोई ऐसे लैंग्वेज यूज कर दी जो यू आर फीलिंग हर्ट, तो आपको क्या करना चाहिए अपने मन ही मन में उस व्यक्ति के प्रति जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो उसको अपने स्क्रीन पे लाएं, माइंड के स्क्रीन पे, एंड जस्ट से दैट आई एम फॉरगिविंग यू फॉर फॉरएवर. तो उससे क्या होगा कि जो एनर्जी कॉर्ड है, इसमें जैसे लिखा ना मैंने एस्ट्रल कॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज कॉर्ड्स ऑफ एनर्जी गोज फ्रॉम योर एनर्जी फील्ड टू अदर पीपल मेंटेनिंग एनर्जी एक्सचेंज विद देम. देयर कैन बी मल्टीपल कॉर्ड्स दैट यू हैव विद इन योर एनर्जी फील्ड. इसमें क्या होता है कि जब हम किसी से रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो हमारे उसके साथ बहुत सूक्ष्म कनेक्शन बन जाता है, चाहे वो यहां है, चाहे कितनी भी दूर है, फॉरन में है. तो ऐसे में हम उस व्यक्ति को अपने मेंटल स्क्रीन पे ला करके एंड वी शुड फॉरगिव हिम अनकंडीशनली. तो उससे क्या होगा कि आपको खुद उसका लाइफ में बेनिफिट होगा. क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप जिसने आपको हर्ट किया हो और आज तक भी आप उसको भूल नहीं पा रहे हो? है चलो अगर आप चाहते हो तो हम लोग एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या थोड़ा सीधा होकर बैठ जाएं एक मिनट के लिए, एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम उस व्यक्ति को सदा के लिए क्षमा कर दें. ये एक्सरसाइज कराया था आपको किसी ने? नहीं. आप सीधा होकर बैठ जाएं, दोनों पैर टचिंग, क्रॉस नहीं होने चाहिए, दोनों पैर टचिंग ऑन द ग्राउंड, बैठ हाथ सीधा, ये ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं, फोर फिंगर एंड थंब टचिंग ईच अदर, एंड देन आई विल से फ्यू वर्ड्स. जैसे ही मैं शब्द बोलता जाऊं आप वैसा ही सोचते जाएं. अगर आप आईज क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू ओपन यू कैन ओपन योर आईज. अपने ऊपर पूरे शरीर को विजुलाइज करें, फोकस योर माइंड ऑन योर बॉडी. फील feel that you are an angel. अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएं जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो या बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो या आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया जीवन में. जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. अब फील करें कि परमात्मा से शक्ति मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है. और वो शक्ति के द्वारा शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा के लिए जिससे मैं समझता हूं कि मेरा कड़ा हिसाब किताब है. आज के बाद कभी भी कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट मैं इस व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा या करूंगी. ये व्यक्ति भी अपने जीवन में आगे बढ़े. परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे. जो मेरा कार्मिक अकाउंट था वो इस आत्मा के साथ पूरा हुआ. मैं कभी भी इनके बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करूंगा. और जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स थी मेरे से कनेक्टेड वो आज से कट कट कट. सच्चे मन से अनकंडीशनली मैं इस व्यक्ति को सदा के लिए क्षमा प्रदान करता हूं. धीरे धीरे वापस आ जाएं. ओपन योर आईज. ओम शांति. ऐसे करके कभी भी लाइफ में किसी व्यक्ति के साथ कोई हिसाब किताब बन जाता है तो खासकर हम सुबह जब योग करते हैं उस व्यक्ति को इमर्ज करें अपने सामने और परमात्मा से शक्ति लेकर के कि ये भी ईश्वर का बच्चा है इसको भी सद्बुद्धि मिले और मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है. कभी भी वो व्यक्ति आपको फेस टू फेस मिले जस्ट स्माइल एंड जस्ट यू कैन विश हिम गुड मॉर्निंग ठीक हो दैट्स ऑल. अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है गिलानी करता है आपकी तो लेट हिम डू इट. लेकिन उनके साथ फिर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है हमारे थॉट्स नेगेटिव चलने स्टार्ट हो जाते. आपको कोई कंपटीशन में जैसे अभी वर्ल्ड कप में ऐसा होता था कि कुछ बैट्समैन कहते थे कि जो हमारे पीछे विकेट कीपर है कुछ कुछ लैंग्वेज बोलते रहते हैं तो क्या करें हम. तो हमने फिर उनको बताया कि जस्ट फील दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ एनर्जी. और अपने भले के लिए उनको बोलो कि वे शुभ भावना शुभकामना आपकी बात आपके लिए. तो जब हम ऐसा सद्भावना रखते हैं तो नेचुरली उसकी नेगेटिव एनर्जी हम तक नहीं पहुंचेगी. उसको नेगेटिव एनर्जी वो खुद ही हर्ट फील करता रहेगा लेकिन आपको इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा करने से. एंड वी बिगिन टू हील स्पिरिचुअली इमोशनली मेंटली इवन फिजिकली व्हेन वी लेट गो ऑफ अवर पास्ट हर्ट्स. 10 साल की बात हम भूले 10-10, 15-15 साल की बात हम नहीं भूल पा रहे हैं तो उससे हमारा ही खुद का नुकसान. नेगेटिव माइंडसेट पीपल लूजेज और ड्रेन एनर्जी क्विकली थ्रू ऑरास एंड मेरिडियंस. जैसे आप जानते हैं हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है बायोमैग्नेटिक फील्ड. हम जो भी सोचते हैं वो हमारा ऑरा क्रिएट करता है. अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है प्योर थिंकिंग है तो हमारा ऑरा जो है बहुत एक्सपेंड हो जाता है. अगर हम नैरो माइंडेड हैं नेगेटिव थिंकिंग है हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ नेगेटिव बातें इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो जितना हम ऐसा काम करते हैं उतना ही हमारा जो ऑरा है वो नेगेटिव होता चला जाता है डार्कर साइड में, एंड उसकी जो लेंथ है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो कम होती चली जाती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारा ऑरा और हमारी मेरिडियंस कॉर्ड्स वो नेगेटिविटी की तरफ जाएं और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करें हमारे शरीर के अंदर। मूव अवे फ्रॉम ब्लेम गेम। आपने देखा होगा कि जब भी हम अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो दूसरे हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ बातें करके कि उसको भी अपने लेवल पे लाने के लिए। तो ब्लेम गेम के अंदर हम अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इससे भी हमारे हम मतलब खुश रहेंगे और मेंटली वी विल बी मोर फोकस्ड। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कि बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आता है कि उन्होंने उसके बारे में ये बोला या रिएक्शन में कुछ और कहा। तो जब आप इतना एनर्जी को फोकस कर देते हैं तो वो आपका क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाती है, एंड एज ए रिजल्ट यू गेट ए वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ, चाहे स्पोर्ट्स है, स्टडीज है, चाहे आपका बिजनेस। देन वी हैव सम वैल्यूज, ओलंपिक वैल्यूज। वैसे तो लाइफ के अंदर जब भी आप वैल्यूज की बात करेंगे तो आपको हमेशा यू विल फील कॉन्फिडेंट। आप थोड़ा भी नेगेटिव काम करेंगे तो आपको अंदर भय रहेगा कुछ ना कुछ, होता है ना। एक अमृत का इतना बड़ा घड़ा है उसके अंदर एक जहर की बूंद डाल देते हैं तो पूरा घड़ा ही जहर हो जाता। ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हम बहुत शुभ भावना रख रहे हैं, बहुत अच्छी मेडिटेशन कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में एक भी व्यक्ति है जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो वो पॉइजन की तरह काम करता है हमारी लाइफ। इसीलिए हम कोशिश करें कि अपने जीवन में ये वैल्यूज को धारण करें। जैसे जो 7 ओलंपिक वैल्यूज है, हमारे नीरज भाई ओलंपिक्स के बारे में बहुत काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी संस्था ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर ये वैल्यूज को पूरे अपने युवा खिलाड़ियों तक लेके जाए और करेज, डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप, इंस्पिरेशन एंड रेस्पेक्ट, हर वैल्यू की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। करेज हमारे अंदर, आप एक सैनिक को कितने भी अच्छे हथियार दे दो अगर उसके अंदर करेज नहीं है लड़ने का, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम कभी भी साहस खो बैठते हैं तो एक छोटे से अपोनेंट से ही हम हार जाते हैं। तो वी हैव टू बिल्ड अप अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू अवर करेजियस एक्शंस। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन, कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्राप्ति करते हैं तो जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलती। और दृढ़ निश्चय को हम बार बार पानी दें, मतलब जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, आपने मान लो एक टारगेट बनाया है मुझे इस बार नेशनल में मेडल लेना है, तो जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो ये इस चीज को आप बार बार विजुलाइज करें कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू अचीव इट। तो जब हम ऐसा करेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे अपने आप से, तो हमारी जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वो फोकस हो जाएंगी और वो हमें प्राप्त कराएंगी जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। देन इक्वालिटी, समानता। अब कोई कोच है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए प्लेयर सभी इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि ये फलाने मिनिस्टर का बच्चा है तो इसको हम सिलेक्शन दे दें और वो किसी गरीब माँ बाप का बच्चा है उसको उसका हम सिलेक्शन ना करें। तो हमें समानता की दृष्टि रखनी चाहिए, तब जाकर के हम अपने इन वैल्यूज को जीवन में लाएंगे। एक्सीलेंस, हर व्यक्ति जीवन में एक्सेल करना चाहता है किसी भी फील्ड में, इसीलिए हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, उसी के लिए हमने ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह डेवलप किए हैं कि भाई हम कैसे एक्सेल करें, जो हमारे अंदर है पोटेंशियल वो बाहर आए और हम अपने जीवन में एक यूनिक अचीवमेंट करें। फ्रेंडशिप, बी फ्रेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे किसी का कितना भी हिसाब किताब बन जाए लेकिन आपस में भाईचारे की भावना, दोस्ती की भावना रखना बहुत जरूरी। अभी रिसेंटली जब हम वहां एक कॉन्फ्रेंस में गए पीस एंड स्पोर्ट्स, तो वहां बताया गया कि कैसे स्पोर्ट्स के द्वारा संसार में पीस की लाने की कोशिश की गई। तो ये फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा डबल्स में लिएंडर बोपन्ना एंड कुरैसी, उनके एक टी शर्ट पे लिखा होता है स्टॉप वार प्ले टेनिस दूसरे के टी शर्ट में। तो इंडिया और पाकिस्तान के दो प्लेयर वो डबल्स का मैच खेलते हैं। उनसे पूछा क्यों ऐसा करते हैं, बोला भी हम चाहते हैं कि मतलब हमारे दोनों देश में फ्रेंडशिप ज्यादा हो। और ऐसे ही अभी क्या किया है कि पैलेस्टीनियन और इजराइल के छोटे छोटे बच्चों की टीम बना के उनकी एक टीम बना देते हैं वो, और फिर दूसरे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की छोटे छोटे बच्चों की टीम बना के फिर उनको कहते हैं आप आपस में मैच करो, इंडिया पाकिस्तान की एक टीम बना देंगे। तो ऐसे फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए अलग अलग बहुत सारे प्रयास पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। और इंस्पिरेशंस, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा हथियार है हमारे जीवन में प्राप्ति करने का उमंग उत्साह। उमंग उत्साह नहीं है तो हम छोटा सा काम करने ही थक जाएंगे। अगर हमारे अंदर उमंग उत्साह है, अगर हम इंस्पायर्ड हैं, तो हम अथक काम करते रहेंगे। अब आप यहां देखो सब भाई बहने कितना सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हैं, सेवा करते रहते हैं, एंड नोबडी इज पेड। ये वॉलंटरी इंस्पिरेशन, तो इस चीज को हमें स्पोर्ट्स के अंदर डेवलप करना। फिर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर अवर कॉलीग्स, रेस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स। अगर हम रेस्पेक्ट रखें, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी शुड रेस्पेक्ट हिम, वी शुड रेस्पेक्ट हिज गेम, ना कि हम जेलसी पैदा कर दें और उसके बारे में कुछ ऐसी वैसी नेगेटिव बातें फैलाएं। तो दीज आर सम ऑफ द सेवन ओलंपिक वैल्यूज विच वी शुड इनकल्केट। आपने देखा होगा कि हम दिन भर अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहे। सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइविंग पे जा रहे हो, कोई भी नहीं आपके साथ, बट स्टिल यू आर टॉकिंग टू द सेल्फ। अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, काफी लोग आप अपने आप से बातें कर रहे होंगे, होता है ना ऐसा। तो जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरनल टेप है जो वहां सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड करती रहती है हमारे इन डायलॉग को जो हम अपने आप से बात करते हैं। अगर हम अपने आप से नेगेटिव बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव रिकॉर्डिंग हो जाती है अंदर, और नेगेटिव रिकॉर्डिंग का रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपने आप से बातें करें अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गेम के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। तो उससे क्या होगा कि वी कैन ट्रांसफॉर्म अवर बायोलॉजी विद अवर बिलीफ। अब जैसे हमने यहां ज्ञान प्राप्त किया कि एक परम शक्ति है परम धाम में और उससे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो यू विल गेट फुल्ली चार्ज्ड। जो बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है ना अभी लोगों की, उसका पहचान क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है, छोटी छोटी बातों पे ही नाराज हो जाना, कहीं जा रहे हैं कहीं किसी को पैर लग गया तो उसी में इतनी लड़ाई हो जाएगी कि एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, दो गाड़ी जा रही है टच होगी तो छोटी सी बात पे इतनी लड़ाई हो जाएगी कि वो उससे उतना नुकसान नहीं हुआ, वो कम पैसे में ही रिपेयर हो सकती है, लेकिन आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे का बहुत ज्यादा नुकसान कर देते। तो ये एक सिंबल है कि हमारा जो टॉलरेंस है, पेशेंस है, लाइफ के अंदर बहुत कम हो चुका है। और उसका रीजन है कि हम लोग रेगुलरली कोई ऐसा ध्यान, मेडिटेशन, विजुलाइजेशन, उसकी कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाते। जो भी लोग रेगुलर अभ्यास करते हैं उनके अंदर उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा पेशेंस रहता है जो मेडिटेशन नहीं करते। तो ये लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारे भी जब फैकल्टीज जाते हैं जेलों में सेवा करने के लिए, तो वो कैदी कहते हैं कि बहन जी बस एक सेकंड के गुस्से ने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। फिर वो ये ट्रेनिंग लेते हैं और अपने जीवन के अंदर एकदम ट्रांसफॉर्म करके दिखा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डायलॉग कोप विद स्ट्रेस बाय टॉक विद योरसेल्फ। जैसे ही आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो जाती है तो जस्ट गो इनटू साइलेंस। आप जैसे ही साइलेंस में जाएंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। केवल हमें अपने उसको फोकस करना है अपने माइंड को। आपने देखा है कि जैसे पेपर के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो जलता है क्या? नहीं जलता। और उसमें लेंस लगा दें तो एनर्जी वही है, केवल उसको थोड़ा फोकस किया गया। तो यहां जो प्रोसेस बताया है वो उस एनर्जी को फोकस करके और अपने टारगेट के ऊपर उसको यूज करना है। ये नहीं है कि हम चाहते तो फुटबॉलर बनना है एंड वी आर डिवोटिंग ओवर टाइम कि थोड़ा सा ये गेम खेल लें फिर वहां ट्राई कर लें, तो वो उससे हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी। वी हैव टू फोकस अवर माइंड व्हाट वी वांट इन अवर लाइफ। एक ही हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को हम बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं, गार्डनिंग की कोई ट्रेनिंग दे दी, उनको कोई कर्मना सेवा दे दिया कि बच्चे गाड़ी साफ करो, झाड़ू लगाओ, अपनी सफाई खुद करो, तो ऐसी क्रिएटिविटी हम खुद अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे प्लेयर्स को। अब एक बार क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है वो जैसे ही गाड़ी में से उतरा अपनी किट लेके, तो उसके एक असिस्टेंट ने वो फटाफट बैग उठा लिया। तो सचिन ने उसको तुरंत बोला कि नो, ये अपनी किट खुद उठाएगा और खुद जाएगा प्रैक्टिस करने। तो ये छोटी छोटी जैसे हॉबीज हैं हमारी, स्किल्स, ये लॉन्ग टर्म में बहुत हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। तो हम ऐसी हॉबीज क्रिएट करें जो हमारे माइंड को बिजी रखें पॉजिटिव थॉट्स से और क्रिएटिव आइडियाज। आपने देखा होगा कई बार हमारी हॉबी हमारा प्रोफेशन बन जाती है, इतना एक्सेल कर जाते हैं कि जो आप नॉर्मल स्टडीज के द्वारा नहीं कर सकते थे। ब्रेन टेक ए होल बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस एंड ऑर्गेनाइज इट इन ए वे दैट मेक्स सेंस टू अस, है ना। हमारा ब्रेन का ये है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे वो इन्फॉर्मेशन लेता है। तो जब हमारे पॉजिटिव और क्रिएटिव कर्म होंगे तो नेचुरली हमारा माइंड पावर ज्यादा होगा। तो हमारे बच्चों को बजाय टीवी और इधर उधर की बातों सिखाने के, उनको ड्राइंग, कोई पोयम, कोई स्टोरी, कोई आर्टिकल लिखना, तो ऐसी क्रिएटिव हॉबीज में डालेंगे बच्चों को, तो वो स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, दोनों में एक्सेल करें। देन राइट डाउन योर ड्रीम्स विच विल फिल योर सोलफुल एनर्जी। ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उसको हम लिख करके रखें किसी पीस ऑफ पेपर, और जैसे ही कॉम्पिटिशन नजदीक आता जाए तो हम कोशिश करें कि एक लाइन लिख करके और अपना कोई कॉपी में उसको रख के और सो जाए। आप देखना कि सबकॉन्शियस माइंड उस लिखी हुई बात के ऊपर पूरा दिन रात काम करना स्टार्ट कर देगा और आपके जीवन में उस प्राप्ति देर सवेर वो करा करके ही मानता है। ऐसे ही हमारा राजयोग एंड क्रिएटिव विजुलाइजेशन। सो व्हाट इज राजयोग? इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द सुप्रीम एनर्जी फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो दिस इज राजयोग। तो हमें अपनी एनर्जी को फोकस करना है और इस एनर्जी को फोकस करने के लिए हमें अपने आप को लिंक करना है सुप्रीम एनर्जी से। जैसे मोबाइल को हम रोज चार्ज करते हैं ना, अगर नहीं चार्ज करें तो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमें जरूरी है कि हम रोज अपने आप को, अपनी बैटरी को चार्ज करें और संकल्प के द्वारा उसे लिंक करें। आप पाएंगे कि कुछ वीक की प्रैक्टिस के बाद आपको खुद फील होगा कि जैसे मेरी जो वाइब्रेशंस हैं वो पहले से ज्यादा चेंज है, मतलब मोर कॉन्फिडेंट, मोर सेटिस्फाइड, मोर पीसफुल एंड मोर अचीविंग। इनके फायदे क्या हैं राजयोग एंड विजुलाइजेशन के? द एनर्जी कॉर्ड्स कैन बी हील्ड एंड रिमूव्ड। जैसे मैंने बताया ना आपको पहले कि हम जिससे भी हमारे रिलेशंस खराब होते हैं हम उससे सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हैं। नॉट ओनली रिलेशंस खराब होने, जब भी हम लाइफ में किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हैं तो हम हमेशा के लिए उससे सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हो जाते हैं। अब जैसे आप यहां से जाएंगे तो यहां के किसी भी व्यक्ति से जिससे आपका परिचय हुआ है तो उसको याद कर सकते हैं. याद करना मीन्स यू आर कनेक्टेड. तो एटॉमिकली वी आर कनेक्टेड टू अर्थ, टू द यूनिवर्स, एंड बायोलॉजिकली वी आर कनेक्टेड टू अर्थ, एंड सबकॉन्सियसली वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर दुनिया में. क्योंकि जो आत्माएं वो अभी इस घर में जन्म ले रही हैं, फिर ऐसे ही रोटेट होती रहती हैं पूरे उसमें. तो ये मॉर्निंग के सेशन में आपको इसका पूरा जब बताएंगे, तो ए ग्रेट थेरेपी फॉर हीलिंग द सेल्फ. जैसे आप साइलेंस में बैठेंगे और वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तो यू विल स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ. ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, ऐसी बुक्स पढ़ना, ऐसे पॉइंट्स नोट करना जो आपको अच्छे लगते हैं. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. मेरा जो भी सेशन है, हो सकता है आपको 25% बातें अच्छी लग रही हो, तो अगर वो आप नोट कर लेंगे तो वो आपकी एक पावर बन जाएगी वो नॉलेज. बट यू हैव टू नोट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स एंड देन शेयर दोज पॉइंट विद अदर्स. दैट इज इम्पोर्टेंट. नहीं तो वो क्या हमारे तक ही रह जाते हैं फिर वो. द वर्ल्ड कैन बी सिंपली चेंज बाई यूजिंग दिस क्रिएटिव एनर्जी बाई राजयोगा. इतना बड़ा काम यहां चल रहा है, जब आप इसकी पूरी डेप्थ में जानकारी लेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. लेकिन वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन इज बाई ट्रांसफॉर्मिंग द सेल्फ. एक एक व्यक्ति भी अगर ट्रांसफॉर्म होता है कहीं किसी फेडरेशन में, किसी एसोसिएशन में, कोई भी ईमानदार व्यक्ति होता है, सभी खिलाड़ी वहां जाते हैं, सर आप करो हमारा काम, है ना. तो ऐसे ही यहां से जो वैल्यूज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा ये पुरुषार्थ है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो भी फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, तो वहां ऐसे ईमानदार नेक लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोचेज हैं या प्लेयर्स हैं, जो इस वैल्यूज को स्प्रेड करें और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वैल्यूज आए स्पोर्ट्स के द्वारा. राजयोगा कैन रीवायर ब्रेन फॉर बेटर परफॉर्मेंस. जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तो पूरा अंदर का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है, सारी फाइलें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं अंदर की. आप कहीं जाओ कहीं काम करने के लिए, अगर डिसऑर्गेनाइज वे में चारों तरफ फाइलें पड़ी हैं, तो क्या आप काम कर पाएंगे? करेंगे, लेकिन ज्यादा समय में कम काम होगा. लेकिन अगर हर चीज ऑर्गेनाइज है तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं. तो जैसे ही आप सुबह सुबह ध्यान में बैठेंगे और आप पूरा प्लानिंग कर देंगे अपने गेम के बारे में, जैसे मान लो रेसलर है, बाउट खेलने जा रहा है, तो जाने से ही पहले जब वो ध्यान में बैठेंगे और ऐसा विजुलाइज करेंगे कि जैसे मैं यहां से जा रहा हूं और ग्राउंड के अंदर वहां गया, और पूरा सीन क्रिएट करना माइंड में कि चारों तरफ ऑडियंस बैठे हुए हैं और मेरी बाउट स्टार्ट होने वाली है और मैंने बहुत अच्छे से आज परफॉर्म किया, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं. तो जब ऐसे थॉट्स हम क्रिएट करेंगे विजुलाइजेशन में, तो वो हमको हमारे ब्रेन को और हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड को वो एक्टिवेट करेगा और हमें वो ही प्राप्त होगा जो हमने विजुलाइज किया. ब्रेन ऑफ मेडिटेटर्स वर्क डिफरेंटली देन द ब्रेन्स ऑफ दोज हु डू नॉट मेडिटेट. ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो मेडिटेशन और नॉन मेडिटेटर्स के जो हमें परफॉर्मेंस देखी, तो काफी डिफरेंस उसमें पाया गया. राजयोगा क्रिएट्स वाइब्रेशंस दैट यू कैन फील थ्रू योर फिजिकल बॉडी. अगर आप आज योग करेंगे तो पूरे दिन आप अपनी अवस्था देखना एकदम डिफरेंट रहेगी, और जिस दिन आप मॉर्निंग में मेडिटेशन नहीं करेंगे तो उस दिन आपको लगेगा कि आई एम नॉट वेल. So that is the difference, the vibrations which you get by connecting with the supreme energy. तो ये चीजें हम अपने जीवन में ध्यान रखें कि जब भी हम सो के उठते हैं तो एक मिनट से हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना. कर सकते हैं, है ना. वन मिनट तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल हमें थोड़ा हाथ मुंह धो के और साइलेंस में बैठ जाना, और ये प्रैक्टिस करनी है कि जैसे पूरा शरीर लाइट और माइट का बना हुआ है, एंड देर इज ए डायमंड लाइक स्टार इन माई फोरहेड. तो एक मिनट का ये अभ्यास हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट तक ले जाए. उसके बाद विजुलाइजेशन, जैसे मान लो आप अपना गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो यहां अलग अलग गेम्स से आए हुए हैं, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, शूटिंग है, तो हमें क्या करना है कि जब भी हमारा इवेंट हो पहले तो हम प्रैक्टिकली उस ग्राउंड में जाएं। ऐसा नहीं है कि आप होटल में रुके हुए हैं और सीधा बाउट के लिए डायरेक्ट चले जाएं बिना उसको पहले देखे हुए। शूटिंग में जा रहे हैं, आपकी कंपटीशन है, तो पहले शूटिंग रेंज को देख के आ जाएं एक दिन पहले। उससे क्या होगा कि आप अपने रूम के अंदर बैठ करके अपने ध्यान में उसको विजुलाइज कर सकते हैं और वो विजुलाइजेशन आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा। और जैसे आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके मन में कोई भी चीज रह रही है तो वो तुरंत स्ट्राइक करेगी कि आपको ये काम करना है, ये किट भूल रहे हो, ये आपका शूज रह गए, आप ग्राउंड के अंदर जा रहे हो, तो वो सारी बातें आपको सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा इधर उधर से। लेकिन जब जल्दबाजी में आप काम करते हैं तो सबकॉन्शियस पावर हमारी काम नहीं करती है ना। लाइफ में भी अगर कोई एकदम जल्दबाजी में आए, अरे मुझे ये दो, मुझे बहुत जरूरी है, तो हम हेल्प करेंगे उस व्यक्ति का। अगर वही चीज हम पोलाइटली कहें कि भाई साहब कैन यू हेल्प मी, तो फटाफट आपके लिए आउट ऑफ वे हेल्प कर देंगे। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये साइंस है कि जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं और विजुलाइज करते हैं तो वो हमें वो इन्फॉर्मेशन आपको टच करेगा, माइंड इंट्यूशन आपका अंदर जो अंतरात्मा है, जो आपको सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी तक जो भी मैंने बताया। अदरवाइज फिर 2-3 मिनट का हम विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आई विल एंड माय सेशन। हाँ जी, ओके।
मैं जानना चाहता हूँ कि आप बड़े लेवल पे जब मेंटल लेवल पे जाते हैं वहाँ पे आपका क्या रहता है, मतलब मेंटल प्रैक्टिस में आप कैसे मेंटल को प्रिपेयर करते हो, या मेडिटेशन या योगा ही करवाते हो या जैसे और भी मेंटल स्किल्स हैं? और इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक मेंटल स्किल सीखने के लिए यू नो मेनी इयर्स यू नीड। गोल सेटिंग है, जैसे विजुअलाइजेशन है, बोलने को हम बोल देते हैं कि विजुअलाइजेशन करने के लिए इट इज डिफिकल्ट।
यस, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, बट अगर आप पर्सनली मिलेंगे तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो 9 लेक्चर्स हैं हमारे 45 मिनट्स के ईच, माइंड पावर, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, वैल्यूज इन स्पोर्ट्स, होलिस्टिक फिटनेस, साइंस ऑफ सक्सेस, साइंस ऑफ मेडिटेशन, तो इनका हमने सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो पहले जब तक माइंड के बारे में नहीं पता चलेगा फिर मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन के बारे में जब पता चलेगा तो फिर स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, तो एक दूसरे से लिंक है ये। शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हम लोग हंगरी गए या इससे पहले एफ्रोएशियन गेम्स हो रहे थे हैदराबाद में, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे डॉक्टर एमपी गणेश, तो जब हम जब वहां एफ्रोएशियन गेम्स में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी ट्रेनिंग कराते हो तो ये बच्चियों का भी मैच है, इनको थोड़ा सा आप कुछ समझा के जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है सर। तो वहां होटल में एक हॉल था, तो हमने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो जब वो बच्चे आ रहे थे वो सेशन अटेंड करने के लिए, तो रास्ते में आते आते वो कभी कोई किसी को बॉक्सिंग मार रहा है, कभी धक्के मुक्के कर रहे हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज में, तो इतने शोर शराबे करके वो टीम वहां पे पहुंची। तो हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि इनका मतलब जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितनी होगी। तो 2 दिन के बाद मैच था साउथ कोरिया के साथ और उससे पहले वो हार चुके थे वो मैच। तो मैंने उनको आने के बाद पहले तो एक ये बताया कि भाई आपका 2 दिन के बाद मैच है, आप एक साइलेंस ऑब्जर्व कर सकते हो 2 दिन के लिए? तो कुछ ने कहा कि हाँ कर सकते हैं सर, कुछ ने कहा नहीं नहीं सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने सबसे पहले उनको बोला कि आप कॉम्पिटिशन के टाइम में ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहें, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ माइंड ट्रेनिंग। हाँ मतलब धीरे धीरे उनका हैबिट्स को देख के। फिर मैंने उनको दूसरा बताया कि आप 2 दिन कहीं पे भी अपनी तरफ से फोन नहीं करेंगे, अगर कोई फोन कॉल आती है अर्जेंट है तो भले आप अटेंड कर लो। तो उसमें भी वो काफी हद तक मान गए। फिर उनको बैठा करके उनका पूरा गेम विजुलाइज कराया, जैसे मैं अभी आपको 3 मिनट कराना अभी कराऊंगा थोड़ा, हम कैसे जॉगिंग करके वापस आएंगे हॉल के अंदर, तो उनको पूरी टीम को बैठा के कि ये पूरी टीम आपकी यहां से उठ के दरवाजे से बाहर निकल के आप ग्राउंड में गए, आपने वार्म अप किया बहुत अच्छे से वार्म अप करके, और चारों तरफ मीडिया आई हुई है, सभी ऑडियंस हैं और आपका मैच स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे करते करते उनको पूरा ग्राउंड का फीलिंग वहां बैठे बैठे ही करा दिया। कराने के बाद फिर वो वापस आए, और वापस आने के बाद जैसा उनको बताया था कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको सुबह उठते ही योग करना है, और योग में क्या फील करना है कि जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर आ रही है, क्योंकि उनको तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो ये थॉट्स क्रिएट करने के बाद कि कोई शक्ति मेरे अंदर आ रही है और आई एम फुल्ली चार्ज, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, तो ऐसे जो अफर्मेशन हैं वो चार पांच उनको दिए, तो आप देख लो उसमें एफ्रोशियन गेम्स का रिजल्ट, फाइनली दे बीट दैट साउथ कोरिया टीम एंड दे वर विक्टोरियस। ऐसे ही योगेश्वर दत्त शर्मा जी जो भीम सिंह जी उस दिन बता रहे थे, तो मैंने केवल उनको बैठा के और पूरा एशियन गेम्स की रेसलिंग बाउट करा करके और फिर वापस ले आए। तो हम अपने मन के द्वारा दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं, यहां बैठे बैठे आप एक सेकंड में दिल्ली पहुंच सकते हो, कितनी पावर होगी माइंड के अंदर। अगर हम एक्चुअल में दिल्ली में जाएं तो एरोप्लेन चाहिए, उसमें टिकट चाहिए, फिर है ना कितना सिस्टम है, उसमें भी क्रैश भी हो सकता है शायद पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मेंटली हम लोग यहां से वहां पहुंच सकते हैं। तो ये पावर को हम इधर उधर नेगेटिव यूज करने की बजाय हम अपने गेम में पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करने के लिए उसको विजुलाइज कर दें, तो आपका जो सबकॉन्सियस पावर्स हैं वो उसमें लग जाती हैं। तो ये चीजें, अब जैसे मान लो वो बॉडी बिल्डर स्टेज पे जा रहा था, तो मैं ऐसे बात करने के लिए लगा ना उसे, तो वो तो पूरा एकदम प्रेशर में था, बोला सर अभी मेरे से बात नहीं करो आप, है ना, तो दैट मीन्स ही इज फुली नर्वस। जो व्यक्ति अपसेट है, नर्वस है स्टेज के ऊपर जाने से पहले, तो आप सोचो वो क्या परफॉर्म करेगा। उनको पहले क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो जज बोलता था सो योर बाइसेप्स, वो ट्राइसेप्स दिखा रहे हैं, उनको दिमाग में ढोल बज रहे कि क्या मतलब वो बोल क्या रहे हैं और सो क्या कर रहे हैं, तो आपकी मार्क्स कट हो जाते थे। तो यहां ऐसी जब हम उनको टिप्स देते हैं तो उसके बाद उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। ये चीज साइकोलॉजी में नहीं सिखाई जाती। साइकोलॉजी में आप उनसे पूछो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला एक ही चीज है, दे डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि आध्यात्मिकता में आत्मा की शक्ति को मानते हैं, मनोविज्ञान में मन की शक्ति को मानते हैं, तो वहां थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हमारे इसमें लेट नाइट पार्टीज वी डोंट अलाउ पीपल, एक लेट नाइट पार्टी 7 दिन तक आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर जाती है। आप जितने भी मैचेस हैं आईपीएल है कहीं पर भी देख लो, खूब पार्टियां होती हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है। फूड के ऊपर पूरा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाता है, आपने किस टाइप का फूड खाया है, दैट विल अफेक्ट योर कॉन्शियसनेस। फिर आपकी दिनचर्या कैसी रही है, मान लो आपने 2-3 फिल्में देख ली एक दिन पहले ही, तो आपका 6 घंटे का रेस्ट गया ना, और वो 6 घंटे का रेस्ट आपकी कितनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम उसमें उनको एजुकेट करते हैं। तो ये ही ऑलमोस्ट साइकोलॉजी है, और इसको समझने से हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसीलिए हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के और ये बीजिंग ब्राजील ओलंपिक गेम्स के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट, उसमें जितनी भी नेशनल टीम्स हैं उनको 3 दिन की ट्रेनिंग यहां ला करके हम वो ट्रेनिंग का भी प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो नीरज भाई हमारे साथ आए हुए हैं और शायद हमारे मैडम भी हेल्प करें, बहन जी अमरज्योति सिंह, तो इनके जो भी रिकमेंडेशन है, चाहे हमारी फैकल्टीज वहां जाए चाहे वो लोग यहां आए, और फिर उनसे आप खुद फीडबैक लेना कि अब क्या आपको अनुभव हुआ ये ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं मालूम ना इनका कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी सोच पे। हम सुबह जैसे हम कॉन्टिन्यूसली, सूरज भाई ने जैसे कल बताया था कि एवरी मिनट वी आर हैविंग नंबर ऑफ थॉट्स, अब मैं बैठ करके मैंने 1 घंटे नेगेटिव थॉट्स कर दिए कि मेरा तो ऑफिस में मुझको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे, मेरे को ये सब प्रॉब्लम है, किट नहीं मिल रही, लीव नहीं मिल रही, तो ये सारे वेस्ट थॉट्स हैं, और ये वेस्ट थॉट्स आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर जाते हैं। तो ये चीजें कहां कवर होती हैं? दे डोंट केयर, आपका सिलेक्शन होना है होना है, नहीं होना नहीं होना। लेकिन हम यहां लोगों की फीलिंग्स को भी ध्यान रखते हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल मैच से एक दिन पहले, आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। जो भी बैट्समैन अच्छे रन बनाता है क्रिकेट में, उनसे आप पूछो कि उस दिन उनकी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आप नेगेटिव फीलिंग से जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, एंड एवरी डे इफ यू कैन लूज योर सेल्फ यू कैन फाइंड योर ट्रू सेल्फ। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आप से बात करने में। पहले ग्राउंड में गए, फिर वापस आए, आते ही टीवी चालू कर दिया, उसमें आप न्यूज का तो आपको पता ही है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना? तो वो सारी नेगेटिव आपने देखी और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी, उसी नेगेटिव न्यूज से आप सो भी गए। सुबह उठे, उठने के बाद सबसे पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसमें 8-10 नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल दी सुबह सुबह, तो फिर कहां से परफॉर्मेंस आएगी? वही चीज अगर हम 2 घंटे बाद उससे पढ़े, मान लो 9 बजे तक हमें कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप बीटा लेवल में चले जाते हैं तो देन दे डोंट अफेक्ट मच, लेकिन अल्फा लेवल में अगर आपने कोई भी चीज नेगेटिव अपने अंदर डाल दी तो आपको ड्रेस्टिकली आपके परफॉर्मेंस को, अपने माइंड की स्थिति को इफेक्ट करेगी। तो ये चीजें, इमेजिनेशन एंड अटेंशन प्लेज द की रोल इन अचीविंग मेडिटेटिव स्टेट, विजुअलाइजेशन इज द की टू लूज योर सेल्फ फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड की इन अनलॉकिंग द रियल स्पिरिचुअल पावर इन यू एंड टैपिंग द हिडन डिवाइन ट्रेजर्स। यहां पूरा खजाना है, राजेश चौहान जी ने बोला था कल, सारी विटामिन्स और मिनरल्स सब है अंदर। ऋषि मुनि लोग एक एक महीने तक कुछ नहीं खा रहे हैं योग में आराम से, तो पावर कहां से मिल रही है? तो पावर है ना कहीं ना कहीं। एक पतला सा आदमी एक इतनी बर्फ की सिल्ली को एक हाथ मारता तोड़ देता, तो कुछ हमारे अंदर पावर्स हैं, लेकिन उनको पावर्स को टैप करके उस फील्ड में लगाना है बस। फील्ड मतलब अगर आप चेस खेल रहे हो तो चेस में लगाना है, चेस खेल रहे हो तो हमें रेसलिंग में लगाने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमें अपनी एनर्जीज को जब तक हम चैनलाइज नहीं करेंगे जो हम अपने जीवन में चाहते हैं तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज क्रिकेटर, उसके बाद फुटबॉल में चले गए, फिर जब एयरफोर्स में गए तो बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार कोई टीम नहीं बन पा रही थी सेंट्रल एयर कमांड की, तो उन्होंने कहा जी साइकिलिंग में चले जाओ। साइकिलिंग में गए तो 30 साल के बाद सेंट्रल एयर कमांड फर्स्ट आ गई। उसके बाद जब यहां आए तो मुझे तो कुछ ना कुछ गेम का शौक था, तो मैंने देखा कि मैराथन जो है इसमें ना कोई स्टेडियम ना ग्राउंड ना कोई इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शू चाहिए और हर व्यक्ति के पास शूज तो होते ही हैं। तो वी स्टार्टेड रनिंग, तो अभी भी हम कुछ ना कुछ इतनी एनर्जी थी बट वी डिड नॉट फोकस इट ऑन इन पर्टिकुलर गेम, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था लाइफ में कि आपको यहां जाना है। तो ऐसे होने से क्या होता है कि हम लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। और फिर ट्रेनिंग्स भी हैं, अभी एक भाई फॉरेन से आए हुए हैं इसमें, तो उन्होंने बताया कि भाई वहां के जो कोचेज हैं वो हमको मजबूर कर देते हैं इतना वर्कआउट करने के लिए, एंड आई कैन नॉट से नो। तो ऐसा है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा, केवल या माइंड ट्रेनिंग करके विजुअलाइजेशन करके ही मेडल नहीं मिलने वाला। इसके अलावा हमारा जो कोचेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारा सेटअप है, वो सारा स्टडी करते हैं तब जाकर के वो आगे बढ़ता है सारा सिस्टम। अब यहां सैंपल आपको तैयार करके दिखाया है ना लोगों को, कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि कर्म को छोड़ के और आप ऐसे आ जाओ। मेडिटेशन का मतलब है कि योगेशु कर्मेशु कौशलम, कि जिस योग से कर्म के अंदर कुशलता है वो है मेडिटेशन। अब हमारे यहां सिक्योरिटी विंग है, कितने ऑफिसर्स हैं जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है वहां, और कारगिल में और इधर जम्मू कश्मीर में सबसे बेस्ट उनकी एफिशिएंसी है। तो मेडिटेशन से हम अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो और कोई किसी का क्वेश्चन? अभी देखो हमारे कई बच्चे हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है 2-3 साल से, यहां पे वो भाई हैं वो नवीन, एक मिनट आओ, तो 2-3 साल से ये बच्चा अभी क्रिकेट स्टार्ट किया। अब इसको उम्मीद भी नहीं थी कि स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन हो गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया है, 62 रन मारे अपनी इतनी एज में, तो थोड़ा माइक देंगे क्या इनको?
जब फर्स्ट ईयर आए थे तो इतना पता नहीं था, फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद जगदीर भाई से मिले थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया यहाँ के बारे में, मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या हुआ, प्रेजेंटेशन भी बहुत सारी देखी थी। उसके बाद घर जाके फिर मेडिटेशन सेंटर जो नियर बाय था वहां जाके मेडिटेशन शुरू की, 7 डेज का कोर्स भी किया, डेली मेंबर बने मेडिटेशन के, फिर सिलेक्शन जोन थे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के उनसे पहले, फिर पता नहीं था कि एक महीने पहले तो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन थी, फिर हमेशा विजुलाइज करना शुरू करा रात को कि ऐसा खेलना है, जहां जो शॉट स्पीक थे उसे रात को विजुअलाइज करते थे और वही परफेक्ट शॉट्स बन चुके थे, और वहां पे जब प्रैक्टिस हुई और काफी करके मेरा सिलेक्शन भी हो गया था।
ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस?
ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रहा था, जिस दिन भी मैच होता था उससे पहले रात को सोने से पहले विजुअलाइज करते थे कि कल के मैच में मेरी ये स्ट्रेंथ रहेगी, अगर मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ तो ये टैक्टिक्स से मेरे को खेलनी है और ये मेरा मतलब जो भी शॉट्स थे अगर वो ऐसे करेंगे तो हम मेरे को ये अपनी स्ट्रेंथ दिखनी है और कहाँ कहाँ मैं स्ट्रांग पॉइंट जो मेरा है वहाँ पे हमेशा फोकस करते रहता था।
इन्होंने 62 रन मारे थे मैक्सिमम, आई थिंक नो सिक्सर एंड नो फोर, सिक्सर था
नो नो नो
फोर
मैनी फोर
हाउ मैनी
अनकाउंटेबल,
तो मतलब काफी अच्छा इस एज से अगर व्यक्ति को गाइडेंस मिल जाए, थैंक यू, तो आदमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे हमारे एज इज 13 एंड हाफ, तो ऐसे ही बदन सिंह जी हैं हमारे बीच में गोल्फर, इनके बेटे ने भी 2-3 साल में ही कम अप लाइक एनीथिंग, ना अभी अपनी एज में सेकंड नंबर चल रहा है गोल्फ में, एशिया में गए कोरिया में उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, लेकिन इसको हमारी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली बात और उसको फोकस करना है अपने गेम के अंदर, तो देन वी विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। तो और कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग अभी 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, तो हम जैसे ही विजुलाइज करते जाएं, मैं जैसे मैं आपको बोलता जाऊं तो आप लोग भी अपने सूक्ष्म शरीर को वैसे ही लेते जाना और पूरा एक राउंड लगा के आएंगे माउंट आबू का हाफ मैराथन और वापस इस ग्राउंड के अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको अपने गेम के हिसाब से करना है, उसको हर गेम हर एक का गेम अलग अलग है, और अगर आप में से कोई टीम आई हुई है जैसे रेसलिंग के आए हुए हैं, आर्मी की टीम आई हुई है, तो जाने से पहले हम लोगों से अलग से मिल जरूर लें ताकि आपको हम आपके गेम के हिसाब से थोड़ा सा वो अभ्यास करा दें कि आपको कैसे उसमें अभ्यास करना है जाने के बाद, ठीक है? अपने आप को बाह्य जगत से आंतरिक जगत की ओर ले जाएंगे, अपने मन को एकाग्र करें, अपने सभी संकल्पों को बाहर से समेट करके अपने अंदर समाएं, फोकस योर माइंड ऑन योर होल बॉडी, इमेजिन करें कि जैसे मेरा ये शरीर लाइट का बना हुआ है, और मैं अपना ये सूक्ष्म शरीर लेकर के इस ग्राउंड इस हॉल से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से भी नीचे उतरते हुए मेन गेट से बाहर वॉक करने के लिए निकले हैं, स्लोली स्लोली वी स्टार्टेड जॉगिंग, ज्ञान सरोवर के परिसर से बाहर जॉगिंग स्टार्ट किया। रनिंग करते करते पूरे माउंट के अंदर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर विजुलाइज मैनी ट्रीज आर कमिंग ऑन द वे, पूरा जॉगिंग करके वापस माउंट सिटी से वापस आते हुए मिलिट्री ग्राउंड को क्रॉस करते हुए ज्ञान सरोवर की तरफ वापस रनिंग करते हुए आ रहे हैं पूरा ग्रुप। नाउ यू आर फीलिंग लिटिल टायर्ड बट स्टिल यू आर रनिंग। फिफ्टीन किलोमीटर 16 ऐसे करते करते धीरे धीरे वापस ज्ञान सरोवर के नजदीक आते हुए मेन गेट की तरफ। बहुत अच्छा फीलिंग रही रनिंग करने के। हम लोग एंटर कर रहे हैं गेट से, कैंपस में आते ही चारों तरफ हरियाली, फ्लावर्स, हार्मनी हॉल की तरफ वापस हार्मनी हॉल में सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर डोर को भी क्लोज ओपन करके अंदर की ओर एंटर करते हुए जहां मेरा फिजिकल बॉडी है वहां पुनः वापस अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिजिकल बॉडी के अंदर वापस प्रवेश किया। मेंटली जो हमने रनिंग की मनी मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स रही, पूरा रूट अच्छे से देखा, मेरे लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट हो चाहे यात्रा हो चाहे स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो या कोई भी काम करने के लिए जब भी मैं जाऊं तो मन में वो सीन को पहले क्रिएट करूंगा, और विजुलाइजेशन के द्वारा अपनी सबकॉन्शियस पावर्स को अपने उस क्षेत्र के अंदर अप्लाई करके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त करूंगा। अभी दोनों हाथ रब करें, पुट इट ऑन योर आईज। आपको इस तरह से अपना जो भी इवेंट है या अपने यहां से आपको यात्रा कर रहे हो या कोई भी काम के लिए आप जाते हो तो मन में कुछ मिनट के लिए आपको विजुलाइज करना है। जो एक्टिविटी होने वाली है उसको एक्चुअल में होने से पहले मन में विजुलाइज करना, फिर आप देखना परिणाम और आप कैसे धीरे धीरे यहां से विजुलाइज करके ऊपर परमधाम की ओर जाके और वहां का, जैसे मॉर्निंग में आपको उषा बहन का कमेंट्री सुनाया था ना आज मॉर्निंग में 4 बजे, तो कितना अच्छा आप विजुलाइज करके कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो जब भी जैसा आपका पॉजिटिव चिंतन होगा तो आपके मन की शक्तियों की धीरे धीरे वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं और हम जो सोचते हैं मन में वैसे परिणाम हमारे जीवन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इतना प्यार से इतना टाइम तक सुना, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।